खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो।
के बाहर एक गधे की बहुत बड़ी वाटिका थी, शाक वाटिका अर्थात वेजिटेबल गार्डन। और वो गधा बड़ा खुश था, पर उसे काम बहुत करना पड़ता था, सब्जियां उगानी, फिर उनको काटना और उनको बेचना। वैसे खुश था पर काम बहुत ज्यादा था, इसलिए कभी इसलिए थोड़ा थोड़ा दुखी भी था। तो उस गधे ने सोचा कोई दूसरा काम किया जाए, कोई आसान सा, कोई अच्छा सा, कि जिसमें मेहनत कम हो और सफलता ज्यादा, पैसे भी ज्यादा मिल जाए। तो वो ढूंढने निकलता है कोई ऐसा काम मिल जाए। तो एक घर के पास पहुंचता है तो देखता है एक बिल्ली गिटार बजा रही है, और वो इतनी तन्मयता से बजा रही है। और उसे यह भी पता चलता है ये बिल्ली बहुत कमाती है केवल गिटार बजा कर ही। सोचता है ये काम तो चाहिए मुझे, ऐसा ही काम मुझे चाहिए। और वो उसके पास जाता है, कहता है मुझे भी गिटार बजाना है। तो बिल्ली कहती है ठीक है लो बजाओ। तो कहते आप मुझे सिखाओ। कहते पहले तुम बजाओ। तो वो ऐसे बजाता है कर्कश कि सारे गधे भाग भाग के आ जाते हैं। तो बिल्ली कहते है ऐसे नहीं, मैं तुमको सिखाऊंगी। बोलता है कितना समय लगेगा। वो कहती है कम से कम 6 मास तो लग जाएंगे। वो कहते 6 मास, इससे तो मेरा ही काम ठीक था अगर 6 मास लगने हैं। वो कहता है ये ठीक नहीं है। वो वहां से निकल पड़ता है और आगे जाता है। आगे जाता है तो उसे एक बेकरी दिखती है, वो एक कुत्ते की बेकरी होती है। सोचता है ये काम ठीक है, इसमें ब्रेड बनाना है, केक बनाना है, ये तो बहुत आसान काम है। और वो कुत्ते से कहता है कि मुझे भी ये सिखा दो। वो कहता है ठीक है। तो केक बनाने लगता है, पर इतना समय लगता है केक बनाने की भी उस प्रक्रिया में कि थोड़ा सा कुछ करके वो गधा थोड़ा सा लेट जाता है। तो कुत्ता कहता है अभी केक पूरा नहीं हुआ, जब तक पूरा नहीं होगा तुम लेट नहीं सकते। वो कहता है अच्छा यहां पर भी मेहनत है। वो कहता है ये नहीं चाहिए मुझे। वो वहां से निकल कर और आगे जाता है। तो देखता है एक व्यक्ति शहद इकट्ठा कर रहा है मधुमक्खियों के छत्ते से। वो कहता है ये काम ठीक है, शहद लो और बेचो, ये तो बहुत आसान है। वो कहता है मुझे भी सिखाओ। वो कहता है ठीक है चलो, ये लो पहनो ग्लव्स, दस्ताने पहन लो और निकालो तुम। तो गधा पहनता है दस्ताने और निकालने जाता है तो मधुमक्खियां उसे काटती है हाथों में। वो कहता है मधुमक्खियां तो काट रही है, मतलब तुमने तो ये ग्लव्स पहने फिर भी। वो कहता है मधुमक्खी पकड़ने वाला, चाहे कितने भी दस्ताने पहनो पर मधुमक्खी का शहद यदि निकालना है वो तो थोड़े तुमको काटेंगे ही। वो कहता है ये मेरे से नहीं होगा, मेरा जो पहला काम था ना वही ठीक है। और वो वापस जाता है, वापस अपनी खेत में, अपनी वाटिका में, शाक वाटिका में, और फिर से अपना सब काम चालू करता है। पर अब जब करता है तो बड़ा खुशी खुशी से करता है, बड़ा गुनगुनाते हुए करता है, बड़ा ही गाते हुए करता है, और उसको लगता है हाँ यही काम सबसे अच्छा है। पावा परम विश्रामा, ये जो है यही कार्य में मैं सबसे अधिक संतुष्ट हूं। ये जो दूसरे डिपार्टमेंट है और जो दूर से दिखाई देते हैं, इनके पास बहुत टाइम है और इनकी सेवा बहुत ही आसान है, इससे तो मेरी जो सेवा और मेरा जो डिपार्टमेंट है और मेरे डिपार्टमेंट के जो बॉस है और साथी है और लोग है वो थोड़े ज्यादा ही ठीक है, क्योंकि इनके पास चला जाऊं तो यहां इनके साथ एडजस्ट होने के लिए तो और टाइम लगेगा। तो तब उसको परम संतोष का अनुभव होता है। बाप दादा किसको देख रहे हैं? संतुष्ट मणिया देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? संतुष्ट मणिया। इतने सारे दिव्य गुण है, किसी के लिए मणि शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ये एक ही ऐसा दिव्य गुण है जिसके लिए बाबा ने मणि शब्द का प्रयोग किया है, और हमेशा कहा जाता है मुरलियों में, तुम संतुष्ट मणियों का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, तुम्हारी चमक चारों ओर फैल रही है। तो कल बाबा ने किसको देखा? तुम संतुष्ट मणिया हो। इन संतुष्ट मणियों की 7 विशेषताएं हैं, कौन कौन सी? तुम संतुष्ट मणियों की 7 विशेषताएं विठल भाई, कौन कौन सी? स्वयं से संतुष्ट नहीं, स्वयं से प्रिय, बाप को प्रिय, स्वयं को प्रिय, और तीसरा मंजू बहन किसको प्रिय? परिवार को भी प्रिय। तो तुम में ये 3 चीजें हैं। संतुष्ट मणिया अर्थात जो स्वयं स्वयं को प्रिय है, ये सबसे अच्छी चीज है। संसार में आत्माओं में स्व के प्रति नफरत, स्व के प्रति घृणा, स्व के प्रति हीन भावना है, स्व के प्रति अपराध भाव है, हमने पाप कर दिया और ये पाप से अब कैसे मुक्त हूं, ज्ञान में चल रहे हैं, इतने समय से ज्ञान में चल रहे, ज्ञान में चलने के बाद हुए हुए पाप विकर्म, विकर्म कुकर्म, अपराध, श्रीमत का उल्लंघन, सूक्ष्म अवज्ञाओं का बोझ बहुत है, सब कुछ पता है ये श्रीमत है, फिर भी श्रीमत को तोड़ा। इसी मुरली में है जो कल नहीं बताया गया कि तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा क्या है। एक गलती जो की वो फिर से न दोहराना, जो करेक्ट एक बार की उसे फिर से न दोहराना, ये तीव्र पुरुषार्थ है। आत्मा आत्मग्लानी से पीड़ित है, स्वघृणा से पीड़ित है, अपराध भाव से पीड़ित है, इसके लिए संतुष्ट मणिया अर्थात सबसे पहली चीज कौन सी है? वो स्व से प्रिय, स्वयं से प्रेम करती है। क्यों प्रेम करती है? क्योंकि उसे पता है कि मैं जो कर रहा हूं वो राइट है, क्योंकि उसे पता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सत्कर्म है, पुण्य कर्म है, वो पाप कर्म नहीं है। और जब जब आत्मा पाप कर्म करेगी, विकर्म करेगी, तब तब आत्मग्लानी आत्मपीड़ा होगी। इसलिए संतुष्ट मणियों का सबसे पहला लक्षण है वो स्व से प्रेम करेगी। दूसरा, क्योंकि वो स्व से प्रेम करती और सत्कर्म करती है, इसलिए बाप भी उनसे प्रेम करेगा। और तीसरा, क्योंकि पहली 2 बातें हैं तो तीसरा, परिवार की आत्माएं भी उनसे प्रेम करेगी, क्योंकि ऐसी आत्माओं को कोई कंप्लेंट, कोई शिकायत, कोई शिका, कोई शिकवा, कोई गिला किसी आत्मा से नहीं। ऐसी शिकायत रहित आत्माओं को सभी आत्माएं प्रेम करती है, परंतु जिनका हृदय शिकायतों से भरा पड़ा है, जो कंप्लेंट बॉक्स बन चुकी है, उनसे सब दूर दूर भागते हैं, क्योंकि उनके पास जाते ही वो अपना पेंडोराज बॉक्स खोल देते हैं, वो पिटारा जिसमें से कंप्लेंट ही कंप्लेंट बाहर निकलती है। तो सबसे पहली चीज है संतुष्ट मणियों की, स्व से प्रिय, बाप उनसे प्रेम करता है, और तीसरा, परिवार भी प्रेम करता है। दूसरी बात, संतुष्टता का संबंध प्राप्तियों से है। जहां प्राप्ति है वहां संतुष्टता है, जहां प्राप्ति ही नहीं वहां संतुष्टता नहीं हो सकती। एक भिखारी कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। जो संपन्न है वो संतुष्ट है, जो विपन्न है वो अतृप्त अप्राप्त है, अलभ्य है। इसके लिए संतुष्टता के लिए क्या चाहिए? माल चाहिए, वखर चाहिए, गुड्स चाहिए, ऐसा सामान चाहिए। अच्छा सामान चाहिए तब आत्मा संतुष्ट होगी। और सामान है ज्ञान का सामान, और सामान है योग का सामान, और सामान है धारणा का सामान, और सामान है सेवा द्वारा पुण्यों का सामान। अगर यही जमा नहीं है तो आत्मा में खालीपन होगा, कुछ कुछ चाहिए ऐसा लगेगा। तो संतुष्टता के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले सामान इकट्ठा करो, गोदाम को भरना पड़ेगा। अभी खाली पड़ा है, व्यर्थ पड़ा है उसमें। दूसरी बात, तीसरा संतुष्ट मणियों की निशानी या संतुष्ट मणि के बारे में जो बात कही है, वो वायुमंडल को भी अपने वाइब्रेशन से क्या करते हैं, क्या करते हैं, परिवर्तन अनुभव होता है वायुमंडल में भी। उनकी संतुष्टता संतुष्टता के वायुमंडल से वायुमंडल में भी वाइब्रेशंस का प्रभाव पड़ता है। चौथा, दूसरी शक्तियों का आह्वान होता है। जहां संतुष्टता महान शक्ति है, बाबा ने कहा, जहां संतुष्टता है वहां दूसरी शक्तियां स्वतः उसके पीछे पीछे आएगी। संसार में संतुष्टता परिणाम बताया है, यहां बाबा संतुष्टता शुरुआत बता रहे। शुरुआत ही यहां से करो कि मैं संतुष्ट आत्मा हूं। ये नहीं कि मेरे पास ये नहीं वो नहीं वो नहीं, पहले ये सब मिला लू फिर संतुष्ट हूं। ये एक दूसरा मार्ग है। यहां मार्ग है मैं संतुष्ट आत्मा हूं, यह पुरुषार्थ है। ये करोगे तो बाकी सारी शक्ति आ जाएगी। कितनी नई बात है। ये चौथा। पांचवा, सदा हर्षित मुख, सदा प्रसन्नचित, दुख नहीं, दर्द नहीं, गम नहीं, पीड़ा नहीं। अंदर जैसा है वैसा ही बाहर दिखेगा। जो मिला है वो सब ठीक। अंग्रेजी में एक कहावत है, कंटेंटमेंट इज नॉट द फुलफिलमेंट ऑफ योर डिजायर्स, इट इज द एक्सेप्टेंस रियलाइजेशन ऑफ व्हाट यू ऑलरेडी हैव। संतुष्टता इच्छाओं की पूर्णता नहीं है। संतुष्टता अर्थात ये नहीं कि मेरी ये इच्छा है, ये इच्छा पूर्ण हो जाए तो मैं संतुष्ट, ये नहीं। संतुष्टता वो एहसास है, वो अनुभूति है कि मेरे पास कितना कुछ है पहले से ही। यह अंतर है। एक है ये इच्छा मेरी पूर्ण हो जाए तो मैं संतुष्ट, ये मेरे पास चीज नहीं है मुझे मिल जाए अब मैं संतुष्ट, ये संतुष्टता नहीं है। संतुष्टता क्या है? ये अनुभूति, ये एहसास कि मेरे पास कितना कुछ पहले से है, ये है संतुष्टता। जो है बहुत है। ये पांचवा। छठवा, परिस्थिति हिला नहीं सकती, हरा नहीं सकती। क्या लगेगी? कार्टून शो। कौन सा कार्टून शो? मिकी माउस। और कौन से कार्टून शो है? पुराना तो यही पता है हमको, अभी नए बहुत हो गए होंगे। तो ये क्या है? छठवा, जितनी भी विकराल परिस्थिति आएगी प्रभावित नहीं होंगे, असर नहीं होगा उनका, भयभीत नहीं होंगे, डराएगी नहीं वो परिस्थितियां, हार नहीं खिला देगी। टॉम एंड जेरी, तो ये सब कार्टून शो चल रहा है। और लास्ट, उनकी जीवन कैसी होगी? अतिंद्रिय सुखमयी मनोरंजन की जीवन होगी। इसलिए बाबा ने कहा उनकी जीवन कैसी होगी? अतिंद्रिय सुखमयी और मनोरंजन की जीवन। तो ये सारी कौन सी बातें थी? संतुष्ट मणियों की बातें थी। तो बाबा ऐसा चाहता है, छोटी सी मेरी इच्छा पूरा कर दो, इतना बन जाओ। एकदम छोटी सी, इतनी छोटी सी। तो ये सबसे पहला काम, तो पहले काम में सात बातें। उसके बाद में दूसरी चीज, वरदान बाबा ने सबको दे दिया। कौन सा दिया? खुश रहो और आबाद रहो। पर बच्चों ने क्या कर दिया? वरदान तो सबको दे दिया, परंतु लेने वाले नंबर वाले, परंतु लेने वालों ने उतना नहीं लिया जितना देने वाले ने देता। दाता में कोई पक्षपात नहीं, भाई भतीजावाद नहीं, परंतु लेने वालों ने गड़बड़ कर दी। क्यों गड़बड़ कर दी? दो शब्द, कभी कभी और थोड़ा थोड़ा। दिया उसने सदा, पर लिया तुमने कभी कभी। दिया उसने सारा कुछ, पर लेने वालों ने थोड़ा थोड़ा ले लिया। ब्राह्मणों के शब्दकोश में, ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ये दो शब्द नहीं होने चाहिए। इन दो शब्दों को हटा दो। कौन कौन से? कभी कभी और थोड़ा थोड़ा। तो सुशील भाई, अभी एक लिस्ट बनाओ, ब्राह्मणों के शब्दकोश में कौन से ऐसे शब्द हैं जो वर्जित है, जो होने ही नहीं चाहिए थे, जिनकी वर्जना है, टैबू। तो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कौन से शब्द नहीं होना चाहिए? आज सारे दिन भर सभी बैठकर इसकी लिस्ट बनाएंगे। सिंगल शब्द बाबा को पसंद नहीं, डबल शब्द उसको पसंद है। ये दूसरा एक उदाहरण, ये तो यही आ गया। तो ये एक वरदान सबको दिया, परंतु लेने वालों ने नंबर वार लिया, क्योंकि कभी कभी और सदा। तो इन दोनों को डिक्शनरी से हटा दो। थोड़ा थोड़ा और कभी कभी, दोनों को बाहर कर दो। तो ये था दूसरी बात, वरदान। तीसरी चीज, वरदान बीज है। फलीभूत कब होगा? रोज सुबह वरदान मिलता है, रोज की मुरली में एक वरदान मिलता है, परंतु फलीभूत नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वरदान को फलीभूत करने का रहस्य, रहस्य अर्थात सीक्रेट, सीक्रेट, सीक्रेट अर्थात जो किसी को नहीं पता है। मैं बताता हूं अब तुमको, जो किसी को नहीं पता रहता है उसको कहते हैं सीक्रेट। और सीक्रेट क्या है? उसको कार्य में लगाओ। और कब लगाओ? तुरंत लगाओ। जिस दिन वरदान मिला उसी दिन उसको कार्य में लगाओ। सारी दिनचर्या में उस वरदान को यूज करना, ये विधि है वरदान को फलीभूत करने की। नहीं तो वो बीज ही रह जाएगा, झाड़ नहीं बनेगा, उसका विस्तार नहीं होगा। तो ये तीसरी बात। चौथी बात, बाप दादा की आश। इसका संबंध इसके पहले चली हुई मुरली से है, जिसमें शायद बाबा ने कोई होमवर्क दिया था, कारण को निवारण करो। बाबा ने यह भी पूछा, कितनों ने किया होमवर्क, कितनों ने किया ये होमवर्क। कारण को निवारण करो अर्थात कारण देना, अर्थात एक्सक्यूजेस देना, अर्थात ये बताना, ये था इसलिए नहीं हुआ, वो था इसलिए नहीं हुआ, ऐसा था वैसा था, मेरा ये ठीक नहीं, मेरा वो ठीक नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, मैं थक गया था, मैं बीमार, मैं कमजोर, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, थकान लगती है, ढेर सारे कारण है, इसलिए ये नहीं हो पाया। सेवा अधिक है, सेवाओं में व्यस्त था। कारण को क्या कर दो? निवारण कर दो, समाधान स्वरूप बन जाओ। उसके बाद में पांचवा, प्रेम का सबूत। कितना प्यार करते हो बाप से? हनुमान जितना छाती फाड़ के बता दे तो भगवान। बाबा से क्या कहा? बहुत बाबा से प्यार करते हैं, परवाने हैं, कुर्बान हो जाते हैं, ऐसे गीत गाते हो। पर कब मानेंगे बाप से प्यार करते हो? जब कौन से शब्द को स्वाहा कर दोगे, ये जो कभी कभी है, ये जो थोड़ा थोड़ा है, इसको स्वाहा कर दो, तो कहेंगे, तो मानेंगे बाबा कि तुम प्यार करते हो। बाबा संतुष्ट नहीं होता है। बाइबल में दिखाया है जीसस क्राइस्ट का एक शिष्य साइमन पीटर, जब जीसस को पकड़ के ले जाते हैं, वो भी उनके पीछे पीछे चला जाता है और उस किले के अंदर चला जाता है। बाकी 10 शिष्य तो बाहर रह जाते हैं, पर वो 12 शिष्य थे, एक ने तो धोखा दे दिया, यहूदा, 30 के सिक्कों में जीसस क्राइस्ट को बेच दिया और धोखा दे दिया। ये जो दूसरा था वो पीटर, वो भी अंदर घुस जाता है जब उसको पकड़ के ले जाते हैं जीसस को, तो और फिर वो वहां बैठ जाता है, उसको अंदर ले जाते हैं जीसस को। तो कुछ सैनिक उसके पास आते हैं, वो कहते हैं हमने तुमको उसके साथ देखा था। वो कहता है मुझे नहीं, नहीं मैं तो नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं वो कौन है। थोड़ी देर के बाद कुछ दूसरे लोग आते हैं, वो कहते हैं अरे तुम उनके साथ, तू उस जीसस क्राइस्ट के साथ में था। वो कहते हैं मैं तो उसको जानता भी नहीं, मेरा क्या संबंध, मैं तो यहां ऐसे बैठा हूं। ये कौन है? उसका सबसे परम शिष्य। फिर तीसरा इवेंट, कुछ लोग और आते, तुम जरूर उसके साथ थे। वो कहते हैं मेरा कोई संबंध ही नहीं, मैं तो नया हूं। और जैसे 3 बार वो झूठ बोलता है, वो एक मुर्गा बांग देता है और तब उसे समझ में आता है अरे मैंने झूठ बोला। और उसे यह भी याद आता है कि जीसस क्राइस्ट ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि तुम 3 बार मुझे नकारोगे। तो यह इवेंट हो गया। उसके बाद में उसको सूली लग गई और 3 दिन के बाद दिखाया जीसस क्राइस्ट वापस आता है, अपने शिष्यों से मिलता है। तब यही साइमन पीटर सामने बैठा हुआ है, जीसस क्राइस्ट उससे पूछते डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वो कहता है यस लॉर्ड आई लव यू, यू नो दैट, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। थोड़ी देर के बाद जीसस क्राइस्ट फिर पूछते डू यू लव मी। अब उसे थोड़ा सा अंदर से खराब लगता है, वो कहता है यस लॉर्ड आई लव यू, हाँ मैं आपसे प्रेम करता हूं। सारे बाकी शिष्य भी बैठे हैं। तीसरी बार फिर पूछता है डू यू लव मी साइमन पीटर। तब उसे रोने लगता है, क्योंकि ये वही था जिसने 3 बार उसे नकारा था और उसको ये लगता है मुझे 3 बार पूछ रहा है, इसका मतलब जरूर कुछ राज है। मैं तो सोचता था किसी ने मुझे देखा नहीं, पर इसको तो पता था। वो कहता है यस लॉर्ड आई लव यू और रोने लगता है। बाप पूछते हैं सबूत क्या है तुम्हारा मुझसे प्यार है? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? यदि बाबा हमसे पूछ रहा है क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो, अर्थात इधर प्रेम में कुछ गड़बड़ है। बाकी किसी शिष्यों से नहीं पूछा जीसस क्राइस्ट ने, उसी से पूछा साइमन पीटर डू यू लव मी। तो कहते यस लॉर्ड यू नो आई लव यू, बहुत जोर से बोलता है। दूसरी बार थोड़ा आवाज ढीला हो जाता है, तीसरी बार रोने ही लगता है, क्योंकि उसको पता था कि वो प्रेम तो करता है, डिंगे तो बहुत मारी, मैं प्यार करता हूं, पर वही था जिसने, पर ये वही शिष्य था जिसने बहुत त्याग किए बाद में, क्योंकि वो रोता है ना, उसके आंसू सच्चे होते हैं। और जीसस क्राइस्ट भविष्यवाणी भी करता है कि एक दिन तुम भी पकड़े जाओगे और तुमको भी सूली पर लटका देंगे ये लोग, और वैसा ही होता है। और वो कहता है मेरे जो प्रभु थे ना, उसको सीधा लटकाया, मुझे उल्टा लटकाओ, तो उसको उल्टा लटकाते। तो कहते हैं बाप दादा का सबूत, 5 नंबर सबूत क्या है? तो सबूत है स्वाहा कर दो। क्या स्वाहा करो? कभी कभी और थोड़ा थोड़ा स्वाहा कर दो। उसके बाद में 6वां कर्तव्य क्या है? टाइटल की, तुम्हारे टाइटल क्या है, तुम्हारे कर्तव्य क्या है, तुम्हारे साथी कौन है? 3 प्रश्न पूछे। कर्तव्य है विश्व परिवर्तक, तुम्हारा टाइटल है, टाइटल है विश्व परिवर्तक, कर्तव्य विश्व परिवर्तन, और तुम्हारा साथी है बाप। फिर उसके बाद में 7 सफलता की चाबी क्या है? दृढ़ता। करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, ये सब नहीं, गेगे नहीं। सफलता की चाबी क्या है? दृढ़ता। तो जो भी करना है और सफलता चाहिए तो दृढ़ता से पूरा जोर लगा दो, तभी होगा वो, नहीं तो नहीं होगा। ढीला ढाला करोगे तो। उसके बाद में आठवा, बाप दादा ने चेकिंग की और चेकिंग में क्या देखा? तुम्हारी ज्ञान अच्छा है, तुम्हारा योग अच्छा है, तुम्हारी सेवा अच्छी है, धारणा अच्छी है, पर एक बात मिसिंग है। वो कौन सी? जो बाप दादा की चेकिंग है। बाप दादा अपने चेकिंग की रिजल्ट बता रहे। कौन सी? अनुभवी मूर्त, इसमें कमी है, बाकी सब अच्छा है पर अनुभव नहीं है। ज्ञान का अनुभव करो तो क्या होगा? तुम्हारे कर्म में लाइट और माइट होगी। धारणा का अनुभव करो तो गुणमूर्त होंगे। उसके बाद में ज्ञान का अपने कर्मों में लाओ, अनुभवी मूर्त बनो तो क्या होगा? श्रेष्ठ कर्म होंगे, नेचुरल कर्म होंगे, महान कर्म होंगे। जो माया की अथॉरिटी है उससे अनुभव की अथॉरिटी पदम गुना श्रेष्ठ है, ऊंची है। इसके लिए अब लक्ष्य क्या रखना है? अनुभव करने का। इस मुरली में दो ड्रिल कराई है बाबा ने, दो बार बीच में रुक के। पहली ड्रिल है एकाग्रता की और दूसरी ड्रिल है लास्ट में। कौन सा सुमन? मैं बाप दादा का दिल तख्त नशीन हूं, इसी रूहानी नशे में स्थित हो जाओ। मैं बाप दादा का दिल तख्त नशीन हूं अर्थात हृदय सिंहासन पर विराजमान हूं, अर्थात उसका जो हृदय सिंहासन है बहुत प्योर है, बहुत पवित्र है, और मैं उस पवित्र सिंहासन पर आसीन हूं, अर्थात मेरे अंदर कैसी प्यूरिटी होनी चाहिए, कितनी स्वच्छता होनी चाहिए, कितना ऊंचा सम्मान है। बाबा ने कहा ये ड्रिल करो, तो पूरी मुरली में दो ड्रिल कराई है, एक एकाग्रता वाली और दूसरी ये फुल स्टॉप एकाग्र, वो पहली ड्रिल थी। अनुभव। उसके बाद में नौवा, एक चीज में सभी पास है। निखिलेश भाई कौन सी बात है वो? सेवा। सेवा में सभी पास है, सारा ध्यान इसलिए सबसे ज्यादा इसी में। जो एक स्कूल में एक विद्यार्थी है, मैथ्स उसका कच्चा है, इंग्लिश उसका बहुत अच्छा है और इंग्लिश में सबसे ज्यादा मार्क्स देता है और सारा ध्यान इंग्लिश में ही है क्योंकि इंटरेस्ट बहुत है, और मैथ्स में बार बार फेल होते रहता है, क्या करना चाहिए उसने? जो सब्जेक्ट कमजोर है उसमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो सब्जेक्ट इंटरेस्ट है उसी में ज्यादा ध्यान देता है। इसलिए बाबा ने कहा तुम सेवा में सब पास हो। सारे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स चाहिए, सारे सब्जेक्ट में पास होना है। फिर उसके बाद में दसवीं बात है अचानक का मौसम, अचानक की सीजन, घंटी। यहां पर कितने लोगों ने शरीर छोड़ दिया? मुरली है 2/4/2008 की, तो यहां पर दादी चले गए। कभी किसी ने सोचा था दादी जाएंगे? बाबा ने पूछा ना, तो अचानक यहां अचानक सब कुछ होना है। और यहां पर और एक बात कही, चार सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट में भी फुल पास से कम पासिंग मार्क्स से कम होंगे तो माला में नहीं आएंगे। अगर किसी एक सब्जेक्ट में भी हार खा लिया तो फिर बाप के गले का हार नहीं बन पाओगे। यह भी बात कह दी यहां पर। इसके लिए यहां पर फिर से वो दृढ़ता की शक्ति का संकल्प करो, ये फिर से वही बात कही यहां पर। उसके बाद में 11, लक्ष्य और लक्षण समान हो, जैसा लक्ष्य रखा है वैसा ही लक्षण हो। वो उदाहरण दिया ना, किसको वरना चाहते हो? लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्य और लक्षण, लक्ष्य जितना ऊंचा रखा है लक्षण भी उतने ही आने चाहिए। यहां पर मुरली खत्म होती है, फिर तीन पार्टियां है। 12वीं पॉइंट, पंजाब से मुलाकात। दो बातें, पहले तो सेवा किसकी की? ब्राह्मणों की। तो ब्राह्मणों की सेवा करना बहुत ऊंचा कर्तव्य है, और दूसरी बात बहुत बड़ा पुण्य है। बाबा ने कहा एक ब्राह्मण की भी सेवा करना पुण्य है। दूसरी बात कलम, किस कलम से डेट फिक्स करनी है? बाप की प्रत्यक्षता की, स्व परिवर्तन की कलम से, स्व परिवर्तन की कलम से बाप के प्रत्यक्षता की डेट फिक्स करो। ये कलम चाहिए, पेंसिल नहीं चाहिए, है ना? पेंसिल से नहीं, इस कलम से, स्व परिवर्तन की कलम से। उसके बाद में डबल विदेशी, क्या चाहिए उनको? कंपनी और कंपेनियन। इसलिए क्या अभ्यास करो, बाप कंबाइंड है। बाबा ने क्या ऑफर किया है, मैं सदा साथ देने के लिए साथी हूं, सर्वशक्तिवान हूं, ये ऑफर सदा साथ हूं। तो ये कंबाइंड, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव। और लास्ट फर्स्ट टाइमर्स, लास्ट पॉइंट, 14th पॉइंट, फर्स्ट टाइमर को क्या कहा, फिर से दो बातें, एक तो वरदान दिया अमर भव और अमर करो दूसरों को, और दूसरा माया का गेट बंद। और माया का गेट कौन सा है, बॉडी कॉन्शियस का मैं और मेरा पन। तो 14 बातें पीछे से चालू करते हैं, नहीं पीछे से नहीं, बीच में पूछते हैं आपको। सातवां की ऑफ सक्सेस क्या है, दृढ़ता। अगर जीवन में सफलता चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, दृढ़ता लानी पड़ेगी, करना ही है, चाहे कुछ भी हो, चाहे दूसरे करे या ना करे, मुझे करना है। दूसरा वरदान, कौन सा वरदान दिया, खुश रहो, आबाद रहो, सबको दिया, समान दिया, पक्षपात नहीं किया, समान दिया, उतना ही दिया, परंतु फिर भी लेने वालों में नंबर वार, क्यों, क्योंकि कभी कभी और थोड़ा थोड़ा। पांचवा साइमन पीटर, डू यू लव मी, प्रेम का सबूत, सबूत देना अर्थात स्वाहा करना। उसके बाद में तीसरा, तीसरा तीसरा वरदान को फलीभूत करने का रहस्य, क्या रहस्य है, कार्य में लगाओ, कार्य में लगाओ। आज जो वरदान मिला तुरंत उसको कार्य में लगाओ। आज कहा तुम हीरो एक्टर हो, आज कहा तुम हीरो पार्टधारी हो, हीरे जैसा तुम्हारा जीवन है, वो एक विस्मृति का युग है, ये स्मृति का युग है, उस युग से इस युग में आ चुके हो। अगर अब भी विस्मृति है अर्थात कलियुगी हो। आठवा बाबा ने चार्ट देखा, चार्ट में तुम्हारा सब अच्छा है, ज्ञान योग धारणा सेवा, पर अनुभव में कमी है, एक्सपीरियंस में कमी है। अभी अनुभव की अथॉरिटी बनो, ये अथॉरिटी के आगे माया की अथॉरिटी कुछ भी नहीं है, बहुत ऊंची अथॉरिटी है ये। उसके बाद में बारहवा पंजाब शेर, बारहवा पुण्य काम करना है, कौन सा पुण्य, ब्राह्मणों की सेवा, और दूसरा काम कलम, पेंसिल नहीं, स्व परिवर्तन की कलम से बाप की प्रत्यक्षता की डेट फिक्स करो। चौदहवा माया का गेट बंद करना और अमर भाव का वरदान खुद भी लेना, दूसरों को भी देना। तेरा डबल विदेशी, क्या अकेला नहीं समझना, क्योंकि जब जब अकेला समझते हो, लोनलीनेस इज अ ट्रिगर फॉर वाइसेस, जब भी अकेलापन आ जाता है विकार आते हैं, इधर उधर के विचार आते हैं। अकेला आना मतलब फिर किसको फोन करूं, फिर किसको मैसेज करूं, जिसको छोड़ दिया था उसको वापस दोस्ती करूं, बड़े पुरुषार्थ किया था उससे मोह से मुक्त होने के लिए, पर आज अकेलापन आ गया तो फिर से उसकी याद आ गई, हाउ आर यू। मैं तो ऐसे ही याद कर रहा था, और फिर से चालू, इतनी मुश्किल से मोह का बंधन तोड़ा था, 6 मास से दूर थे और अकेलापन आ गया और तुरंत फिर से सारा चालू हो गया, 6 मास की मेहनत सारी पानी में। क्योंकि अकेलापन आ गया, अब अकेलेपन ऐसी बेचैनी की अवस्था है कि कुछ तो चाहिए, कोई तो चाहिए, और कुछ भर नहीं पाता, और भरने के लिए पुराने व्यक्ति, पुराने संबंध जो छूट गए, भूल गए, 6 महीना बिजी थे सेवाओं में, ज्ञान योग में, अभी एकदम अकेलापन आ गया, अचानक आया हुआ अकेलापन, वो फिर से उन्हीं व्यक्तियों से जोड़ता है, अकेलेपन की माया। ये अच्छा टॉपिक है। चौथा बाप दादा की आश, कौन सी आश है, कितनी आशा है, कितनी याद रखे और कब कब इसकी आशा है पूरी नहीं होती। कौन सी आश है, कौन सी आश है बाप दादा की, आश क्या है, समस्या को कारण को निवारण करो, पहली पॉइंट संतुष्ट मनिया। तो आशीष भाई संतुष्ट मनिया की 7 बातें बताओ, जल्दी बताओ, नहीं तो विठ्ठल भाई पूरी बता देंगे। तैयार है उनके तो वायुमंडल के परिवर्तन नहीं, पहले से बताओ। बाप प्रिय लोक, लोक और परिवार एक ही है। स्वयं बाप परिवार एक, दूसरा वायुमंडल का क्या परिवर्तन, चलो ठीक है। तीसरा, उधर मत देखो बंद करो। कृष्णा माता सत्कर्म नहीं है यहां, दूसरी महान शक्ति इसमें नहीं बताया हमने, दूसरी शक्तियों का आह्वान और हर्षित मुख और प्रसन्नचित और शक्तियां आ जाती है दूसरी, और परिस्थितियों में हिलेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, कार्टून शो, फिर उसका आधार प्राप्ति है सेकंड पॉइंट, फिर विठल भाई कौन सी बची है, निखिलेश भाई, हाँ चिमन भाई, अतीन्द्रिय सुखमय और मनोरंजन वाली जीवन, आठ नौवा सेवा में सब पास है, दसवा अचानक की सीजन, अचानक की घंटी, अचानक की सीजन, सीजन भी कहा एक जगह, तो अचानक की सीजन सब अचानक चले गए, सबके जाने का अब टाइम आ गया है, अचानक जाएगा जो भी जाना है, इसलिए क्या करो, इसलिए सारे ही सब्जेक्ट में एक भी सब्जेक्ट में कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो बाप के गले का हार नहीं बन पाएंगे। उसके बाद में दसवा हो गया, नौवा हो गया, आठवा हो गया, सातवा हो गया, छठवा हो गया, कौन सा, हाँ ग्यारह बोलो फिर आप। लक्ष्य और लक्षण को क्या कर दो, समान कर दो, हाँ एम कर दो, तो दो ड्रिल सिक्स, हाँ कर्तव्य क्या है, टाइटल क्या है, और तुम्हारे, और तुम्हारे साथ कौन है, ये याद रखना है कि हम किसी एक व्यक्ति के परिवर्तक नहीं है, किसी एक परिवार के नहीं, किसी समाज के नहीं, भारत के नहीं, विश्व के परिवर्तक है, तो सारे विश्व को परिवर्तन करना हमारा काम है, बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। तो दो ड्रिल कराई, एक ड्रिल थी एकाग्रता की और एक ड्रिल वो थी फुल स्टॉप की, एकाग्रता की और फुल स्टॉप की, और दूसरी ड्रिल थी क्या हूं मैं, बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा हूं, बाप के दिल तख्त नशीन, इस रूहानी नशे में रहो, ये दो समान, एक तो समान कहो या सेकंड ये जो समान था इसका अभ्यास करना है अभी रोज अमृत वेला, कि मैं कौन हूं, बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। तो ये इतनी मुरली आज फिर से पढ़ना, इस मुरली से कुछ होमवर्क निकालना, एक तो अभी होमवर्क लिखो इस मुरली से, पहला होमवर्क ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कौन कौन से शब्द नहीं होने चाहिए, एक, दूसरा अकेलेपन की माया, तीसरा मैं बाप के दिल तख्त नशीन हूं तो मुझे क्या करना है, चौथा मैं विश्व परिवर्तक हूं तो मुझे क्या करना है, हाँ अभी दूसरा दे रहे, ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कौन से शब्द नहीं होने चाहिए, अकेलेपन की माया, अगला असंतुष्ट मणियों के लक्षण, असंतुष्ट मणियों के लक्षण, जो असंतुष्ट रहते हैं उनके कौन से लक्षण है वो निकालने हैं, उनका प्रकाश कहां कहां फैलता है, असंतुष्ट मणियों के लक्षण, तो ये हो गया। फिर उसके बाद में टॉपिक लिखो कभी कभी थोड़ा थोड़ा, टॉपिक है कभी कभी कॉमा थोड़ा थोड़ा, बस इतना ही, इसका विस्तार करो जितना विस्तार कर सकेंगे, कभी कभी थोड़ा थोड़ा। उसके बाद में अनुभवी मूर्त आत्मा के लक्षण, हाँ फिर अचानक की सीजन, टॉपिक अचानक की सीजन, अचानक की घंटी या अचानक की सीजन, कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद में माया को एक वेलकम का भी पॉइंट था मुरली में, जब अकेला फील करते हो तो माया को वेलकम करते हो, तो माया को वेलकम हम कब कब करते हैं, माया को वेलकम हम कब कब करते हैं, माया का वेलकम गेट तो वेलकम हम कब कब करते हैं। उसके बाद में कार्टून शो परिस्थितियां कार्टून शो लगे इसके लिए क्या करें, कार्टून शो लगे इसके लिए क्या करें, ये एक होमवर्क। इतना ठीक है, और निकालो, इसमें से बहुत निकलेंगे, एक एक 14 पॉइंट्स में से एक एक पॉइंट में दो दो होमवर्क निकल सकते हैं, इतनी सारी चीजें इसमें। ये मुरली बहुत बड़ी है, एक ये मुरली में ढेर सारे वैरायटी टॉपिक्स है, कोई एक टॉपिक नहीं है, कहां संतुष्टता से चालू किया और कहां पहुंच रहे हैं। हाँ, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें से निकाल सकते हैं। टॉपिक्स निकाल के पहले लिख लो और फिर सारे दिन भर अलग अलग समय पर अलग अलग रीति से उसका चिंतन मनन करते रहो, तो बुद्धि इसी में बीती रहेगी। ओम शांति।